एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथसार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज ग्रंथसार में हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जो अमेरिकी साहित्य में मील का पत्थर मानी जाती है पर काफी विवादों में भी रही है, जेडी सैलिंगर की द कैचर इन द राई।
हाँ बिल्कुल, सैलिंगर खुद भी मतलब काफी रहस्यमयी किस्म के लेखक थे। दूसरा विश्व युद्ध देखा, उसकी भयावहता झेली,
और शायद उसी का असर उनके लेखन पर पड़ा। फिर मशहूर हुए तो एकदम एकांत में चले गए।
सही बात है। और ये उपन्यास 1951 में जब आया तो हंगामा मच गया। कई लोगों ने इसे टीनेज गुस्से और बेचैनी की एकदम सच्ची आवाज कहा। पर कई स्कूलों ने इसकी भाषा, इसके विषय जैसे सेक्सुअलिटी या विद्रोह, इन वजहों से इसे बैन भी कर दिया।
हाँ वो तो है। तो आज हम इसी दुनिया में थोड़ा गहरे उतरेंगे। होल्डन कॉफील्ड की कहानी क्या है, उसके मन में क्या चल रहा है, और ये उपन्यास हमें क्या सोचने पर मजबूर करता है?
तो कहानी का हीरो कह सकते हैं 16 साल का होल्डन कॉफील्ड है, और वो खुद हमें अपनी कहानी सुना रहा है।
अच्छा,
वो किसी सैनिटोरियम या शायद मानसिक अस्पताल जैसी जगह पर है, और वो याद कर रहा है पिछली क्रिसमस से ठीक पहले क्या क्या हुआ था, जब उसे उसके बोर्डिंग स्कूल पेंसी प्रेप से निकाल दिया गया
अच्छा,
था।
स्कूल मतलब पढ़ाई में?
हाँ, लगभग हर विषय में फेल। तो बजाय इसके कि वो घर जाकर अपने माँ बाप का सामना करे, उनकी निराशा देखे,
भाग जाता है।
बिल्कुल, स्कूल बंद होने से कुछ दिन पहले ही निकल पड़ता है और न्यूयॉर्क शहर चला
और
जाता
ये
है।
सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं है ना, ये उसके अंदर की भी एक यात्रा है।
हाँ, असल में वही ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो एक तरह से अर्थ खोज रहा है, जुड़ाव खोज रहा है, वो प्रामाणिकता की तलाश में है।
और उसका मुख्य संघर्ष क्या है?
वो बचपन की मासूमियत, जिसे वो बहुत कीमती मानता है, और ये वयस्क दुनिया जिसे वो फोनी कहता है, बनावटी, झूठी।
हाँ, ये शब्द फोनी, ये तो जैसे उसका तकिया कलाम बन जाता है।
बिल्कुल, हर चीज में उसे यही फोनीनेस नजर आती है, पाखंड, दिखावा। लोग बस दुनिया को दिखाने के लिए जी रहे हैं।
पर क्या ये सिर्फ दुनिया की आलोचना है, या कहीं ना कहीं ये उसकी अपनी अंदर की कश्मकश, उसके डर का एक कवच है?
ये बहुत दिलचस्प सवाल है,
हाँ,
क्योंकि होल्डन खुद भी बड़ा विरोधाभासी है।
कैसे?
देखिए, वो लोगों से जुड़ना चाहता है, उसे अकेलेपन से नफरत है, पर जैसे ही कोई करीब आता है,
वो उसे दूर कर देता है।
हाँ, और वो दूसरों को फोनी कहता है, पर खुद भी तो झूठ बोलता है, अपनी उम्र से बड़ा बनने की कोशिश करता है।
तो ये कड़वाहट क्या ये उसके अतीत से जुड़ी है? आपने उसके भाई का जिक्र किया था।
हाँ, एली, उसका छोटा भाई जिसकी ल्यूकेमिया से मौत हो गई थी। होल्डन के लिए एली मतलब वो मासूमियत और अच्छाई का प्रतीक था। वो बेसबॉल ग्लव पर हरी स्याही से कविताएं लिखता था। सोचिए जरा, होल्डन के लिए वो एकदम परफेक्ट था।
तो एली की याद एक तरह से पैमाना बन जाता है उसके लिए।
बिल्कुल, और उस पैमाने पर बाकी दुनिया खरी नहीं उतरती। जैसे पेंसी प्रेप में उसका रूममेट स्ट्रेडलेडर,
हाँ, वो कैसा है?
बाहर से तो एकदम हीरो टाइप, आकर्षक, सलीकेदार, पर होल्डन उसे सीक्रेट स्लॉब कहता है, मतलब अंदर से लापरवाह, सतही।
अच्छा,
और फिर जेन गैलगर है, एक लड़की जिससे होल्डन का पहले एक भोला सा रिश्ता था। जब स्ट्रेडलेडर जेन के साथ डेट पर जाता है तो होल्डन को बहुत गुस्सा आता है।
और इसी बात पे लड़ाई होती है।
हाँ, जोरदार लड़ाई, और यही वो वजह बनती है कि होल्डन उसी रात पेंसी छोड़ देता है। वो गलियारे में चिल्लाता है, स्लीप टाइट या मोरॉन्स,
एक तरह से पूरी व्यवस्था को चुनौती
कह सकते हैं। अब वो न्यूयॉर्क में है, अकेला, एडमोंट होटल में रुकता है, और खिड़की से बाहर देखता है तो उसे मतलब अजीब अजीब लोग दिखते हैं। वो जुड़ने की कोशिशें करता है, होटल के नाइट क्लब में जाता है, कुछ बड़ी उम्र की औरतों से बात करने की कोशिश करता है, पर वो बात बनती नहीं।
नाकाम कोशिशें।
फिर वो निराशा में एक प्रोस्टिट्यूट सनी को बुला लेता है, पर जब वो आती है तो वो उससे सिर्फ बात करना चाहता है, जो जाहिर है नहीं हो पाता। वो उससे पैसे दे देता है, पर फिर उसका दलाल मॉरिस आता है।
और वो क्या करता है?
वो होल्डन से और पैसे ऐंठता है, उसे मारता भी है। ये होल्डन के लिए बहुत अपमानजनक अनुभव होता है। उसे लगता है कि दुनिया कितनी मतलबी और हिंसक है।
हाँ, ये वयस्क दुनिया के कड़वे सच हैं जो उसे एक के बाद एक मिल रहे हैं। अकेलापन, शोषण।
बिल्कुल, वो मन ही मन किसी सख्त फिल्मी हीरो की तरह बदला लेने की सोचता है, पर असल में तो वो बस एक डरा हुआ अकेला लड़का है।
अगले दिन भी क्या उसकी कनेक्शन बनाने की कोशिशें जारी रहती हैं?
हाँ, पर वो भी ज्यादातर नाकाम ही रहती हैं, जैसे सैली हैज के साथ उसकी डेट।
सैली हैज, वो कैसी लड़की है?
वो कह सकते हैं पारंपरिक है, आकर्षक है, थोड़ी सतही भी। उसे वो चीजें पसंद है जिनसे होल्डन चिढ़ता है, जैसे फैंसी नाटक वगैरह।
तो डेट कैसी रहती है?
शुरू में ठीक चलती है, नाटक देखते हैं, आइस स्केटिंग करते हैं, पर फिर अचानक होल्डन का गुस्सा फूट पड़ता है। वो समाज की बुराई करने लगता है, कहता है सब कुछ कितना बनावटी है।
और फिर वो भाग जाने वाला प्रस्ताव रखता है।
हाँ, वो सैली से कहता है कि चलो सब छोड़कर कहीं दूर जंगल में रहें, एकदम मतलब बचकाना और अव्यावहारिक।
जाहिर है सैली मना कर देती होगी।
हाँ, और जब वो हकीकत बताती है तो होल्डन उसे बहुत बुरा भला कहता है। डेट बुरी तरह खत्म होती है, एक और रिश्ता टूट गया।
और कोई कोशिश?
वो कार लूस से मिलता है जो कॉलेज में है, और होल्डन उसे थोड़ा समझदार मानता है। वो उससे सेक्स और जिंदगी पर बात करना चाहता है, पर लूज उसे टाल देता है, कहता है तुम अभी बच्चे हो, जाओ किसी साइको एनालिस्ट से मिलो।
फिर वही अकेलापन।
हाँ, वो खूब शराब पीता है, नशे में धुत होकर सेंट्रल पार्क में भटकता है ठंड में,
और यही वो बत्तखों के बारे में सोचता है।
हाँ, वो बार बार सोचता है कि जब झील जम जाती है तो ये बत्तखें आखिर जाती कहाँ हैं। ये सवाल, ये शायद इसकी अपनी अनिश्चितता है।
बदलाव का डर, एक सुरक्षित जगह की तलाश।
बिल्कुल, वो कहाँ जाए जब सब कुछ बदल रहा है, जब कुछ भी भरोसे लायक नहीं लग रहा।
इसी भटकाव में कुछ प्रतीक भी उभरते हैं ना, जैसे वो उसकी लाल रंग की शिकार वाली टोपी।
हाँ, वो रेड हंटिंग हैट, वो उसे अक्सर पहनता है, खासकर जब वो अकेला या असुरक्षित महसूस करता है। ये शायद उसकी अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश है।
एक तरह का कवच।
हाँ, कह सकते हैं। और फिर वो म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री,
उसे वो जगह क्यों पसंद है?
क्योंकि वहां सब कुछ वैसा का वैसा रहता है, हजारों साल पुरानी चीजें कांच के केस में बंद, कुछ नहीं बदलता। ये उसकी स्थिरता की चाहत दिखाता है। वो चाहता है कि बचपन की तरह सब सुरक्षित और स्थिर रहे, पर वो अंदर नहीं जाता है ना। नहीं, शायद उसे पता है कि वो उस बीते हुए समय में लौट नहीं सकता, और इसी दौरान वो फीबी के लिए खरीदा हुआ रिकॉर्ड भी तोड़ देता है।
लिटिल शर्ली बीन्स, मासूमियत का प्रतीक जो टूट गया।
हाँ, अब वो एकदम मतलब बिखरने की हालत में है।
और तब वो किसके पास जाता है?
अपनी बहन फीबी के पास। ये शायद कहानी का सबसे अहम मोड़ है। वो रात में चुपके से घर जाता है।
फीबी सिर्फ 10 साल की है, पर वो काफी,
हाँ, वो अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार और संवेदनशील है। वो फौरन समझ जाती है कि होल्डन को फिर स्कूल से निकाला गया है,
और वो उसे चुनौती देती है।
हाँ, वो पूछती है कि क्या दुनिया में कोई एक भी ऐसी चीज है जिसे तुम सच में पसंद करते हो। होल्डन एकदम चुप हो जाता है, सोच में पड़ जाता है,
और तब वो उस कैचर इन द राय वाली बात कहता है।
हाँ, वो रॉबर्ट बर्न्स की कविता की लाइन को गलत समझता है, पर उसकी कल्पना बहुत मतलब दिल को छूने वाली है।
वो क्या कल्पना करता है?
वो देखता है कि एक बड़ा सा राई का खेत है और हजारों बच्चे उसमें खेल रहे हैं, पास में ही एक गहरी खाई है, चट्टान का किनारा, और होल्डन का काम है उस किनारे पर खड़े रहना, और जो भी बच्चा खेलते खेलते खाई की तरफ आए उसे गिरने से पहले पकड़ लेना। टू बी द कैचर इन द राय।
वाह, ये तो उसकी मासूमियत को बचाने की गहरी इच्छा है।
बिल्कुल, शायद वो एली को नहीं बचा पाया, तो अब वो दुनिया के सारे बच्चों को उस वयस्क दुनिया के खतरों से, उस खाई से बचाना चाहता है।
पर फीबी उसे असलियत में वापस लाती है, वो उसे अपने क्रिसमस के पैसे दे देती है।
हाँ, होल्डन रो पड़ता है, फिर वो अपने एक पुराने टीचर मिस्टर एंटोनिनी के पास जाता है।
मिस्टर एंटोनिनी, वो कैसे हैं?
वो काफी समझदार लगते हैं, होल्डन का हौसला बढ़ाते हैं, उसे परिपक्वता पर एक बहुत जरूरी सलाह भी देते हैं।
क्या सलाह?
वो विल्हेल्म स्टेकल का एक कोट बताते हैं कि अपरिपक्व इंसान की निशानी है कि वो किसी ऊंचे मकसद के लिए शान से मरना चाहता है, जबकि परिपक्व इंसान उसी मकसद के लिए विनम्रता से जीना चाहता है।
ये तो सीधे होल्डन के रवैये पर टिप्पणी है।
हाँ, पर उसी रात कुछ ऐसा होता है जिससे होल्डन बुरी तरह डर जाता है।
क्या होता है?
वो सो रहा होता है और अचानक जागता है तो देखता है कि मिस्टर एंटोलिनी उसका माथा सहला रहे हैं।
ओह,
अब ये हमदर्दी थी या कुछ और, ये साफ नहीं है, पर होल्डन इसे गलत समझता है, उसे ये एक और धोखा लगता है
और वो भाग जाता है।
हाँ, घबराकर भाग जाता है। अब उसे लगता है कि कोई भी वयस्क भरोसे के लायक नहीं है, वो पूरी तरह टूट चुका है।
वो सड़कों पर भटक रहा है, बीमार है, उसे स्कूल की दीवारों पर गंदी बातें लिखी दिखती हैं,
और उसे लगता है कि ये गंदगी, ये बनावटीपन, ये बचपन की पवित्र जगहों तक पहुंच गया है।
तब वो क्या फैसला करता है?
वो फैसला करता है कि वो हमेशा के लिए भाग जाएगा कहीं दूर जहां उसे किसी से बात ना करनी पड़े, शायद गूंगा बहरा होने का नाटक करेगा,
पूरी तरह से कट जाना चाहता है।
हाँ, वो फीबी को म्यूजियम में बुलाता है अलविदा कहने और पैसे लौटाने।
और फीबी?
फीबी अपना सूटकेस लेके पहुंच जाती है। वो कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी।
ये तो कहानी का टर्निंग पॉइंट है।
बिल्कुल, फीबी का वो प्यार, उसका साथ चलने का इरादा, वो होल्डन को हिला देता है। उसे पहली बार एहसास होता है कि उसके भागने का असर किसी और पे क्या होगा,
जिसे वो प्यार करता है।
हाँ, वो फीबी को चोट नहीं पहुंचा सकता, वो उसे मना कर देता है।
और फिर वो कैरेसेल वाला सीन आता है।
हाँ, वे पास के चिड़ियाघर जाते हैं, बारिश हो रही होती है, फीबी कैरेसेल पर बैठती है, गोल गोल घूमती है और होल्डन उसे बस देखता रहता है बारिश में भीगते हुए। और अचानक उसे एक अजीब सी शांति महसूस होती है, एक खुशी।
वो उसे बचाने की कोशिश नहीं कर रहा।
नहीं, वो बस उसे देख रहा है। शायद वो पहली बार जिंदगी को, उसकी गति को, उसके उतार चढ़ाव को स्वीकार कर रहा है। कैरोसेल का घूमना, जीवन चक्र की तरह।
और वो पीतल की अंगूठी पकड़ने की कोशिश, जोखिम लेना।
हाँ, शायद उसे समझ आता है कि वो फीबी को हर खतरे से नहीं बचा सकता, उसे कोशिश करने देना होगा, और वो भागने का इरादा छोड़ देता है।
तो कहानी कहाँ खत्म होती है?
होल्डन वापस उसी संस्थान में है जहां से उसने कहानी सुनानी शुरू की थी। वो ठीक हो रहा है पर पूरी तरह नहीं। वो कहता है कि जिन लोगों की उसने इतनी बुराई की, अब उसे उन सब की याद आ रही है। और उसकी आखिरी लाइन, कभी किसी को कुछ मत बताना, अगर तुम बताते हो तो तुम सबको याद करने लगते हो।
ये तो बहुत मार्मिक है। मतलब जुड़ाव से दर्द भी मिलता है पर शायद उसके बिना रहा भी नहीं जाता।
बिल्कुल। तो अगर हम मुख्य विषयों को देखें, एक तो वो बनावटीपन या पाखंड,
हाँ, जिसके खिलाफ होल्डन का गुस्सा है।
फिर अलगाव, अकेलापन,
मासूमियत को बचाने की वो तीव्र इच्छा,
बचपन से जवानी का वो मुश्किल सफर,
एली की मौत का दुख और ट्रॉमा,
पहचान का संकट, सेक्सुअलिटी को लेकर कंफ्यूजन, और हाँ, मेंटल हेल्थ का मुद्दा भी,
जिसे सैलिंगर ने काफी, मतलब उस जमाने के हिसाब से, बड़ी संवेदनशीलता से छुआ है।
और ये सब हम तक पहुंचता है होल्डन की अपनी आवाज में। वो एक अनरिलायबल नैरेटर है, मतलब हम कहानी सिर्फ उसके नजरिए से जानते हैं,
जो शायद पूरी तरह सच ना हो।
हाँ, और भाषा एकदम बोलचाल की, टीनेज स्लैंग वाली, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का इस्तेमाल है। जैसे विचार दिमाग में आते जाते हैं वैसे ही लिखे गए हैं।
और शायद इसीलिए ये किताब आज भी इतनी रेलेवेंट लगती है। ये सिर्फ एक टीनेज लड़की की कहानी नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये प्रामाणिकता की तलाश की कहानी है, दुनिया की मुश्किलों से जूझने की कहानी है, दुख और नुकसान को झेलने की कहानी है,
और मानवीय जुड़ाव की जरूरत की कहानी है। भले ही उसमें कितना दर्द क्यों ना हो, होल्डन में खामियां हैं पर उसका दर्द हमें महसूस होता है।
सही बात है। शायद इसीलिए आज भी युवा पाठक होल्डन में खुद को देख पाते हैं, वो अकेलापन, वो गुस्सा, वो समझ ना आने वाली उदासी।
तो अंत में ये कहानी हमें क्या सिखाती है?
शायद यही कि बड़े होना आसान नहीं है, मासूमियत हमेशा नहीं रहती, पर असली मैच्योरिटी शायद दुनिया की कमियों को जानते हुए भी
जुड़ने की हिम्मत करने में है,
दर्द के जोखिम के बावजूद।
हाँ, बिल्कुल। ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।